ओम शांति ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बताया कि सतयुग में है एक मत, संगम युग पर है ऊंच श्रीमत और कलयुग में है अनेक मत। कलयुग के अंदर अनेक मनुष्य हैं, एक ही घर में थोड़े ही लोग होंगे, जितने होंगे हर एक की अपनी अपनी मत है, किसी की भी मत किसी से नहीं मिलती है। तो बाबा ने कहा ऊंच से ऊंच श्रीमत देने वाला कौन है? एक बाप है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। दूसरी बात बाबा ने कही कि लौकिक के अंदर द्वापर युग के अंदर जो राजाएं महाराजाएं बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। राजाएं महाराजाएं जो भी बनते हैं वो दान पुण्य करने से, लेकिन तुम बच्चे बेहद की बादशाही कैसे लेते हो? पढ़ाई और सर्विस से। सर्विस के लिए बाबा ने कहा कि सर्विस करने वाले भी बच्चे ऐसे चाहिए जो कि धारणा मुक्त युक्त हो। ऐसा ना हो सेवा करने जाए तो डिस सर्विस करके आए। जो अच्छी तरह सर्विस कर सकते हैं और कैसे कैसे सेवा करनी है और कहां कहां पर जाकर के सेवा करनी है वो बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 3 जनवरी 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। मीठे बच्चे निराकार बाप तुम्हें अपनी मत देकर आस्तिक बनाते हैं। आस्तिक बनने से ही तुम बाप का वर्षा ले सकते हो। आज का प्रश्न है, बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना है? बेहद की राजाई प्राप्त करने के लिए किन दो बातों पर पूरा पूरा अटेंशन देना है? उसका उत्तर है पढ़ाई और दूसरा सर्विस। सर्विस के लिए लक्षण भी बहुत अच्छे चाहिए। ये पढ़ाई बहुत वंडरफुल है, इससे तुम राजाई पद प्राप्त करते हो। द्वापर से धन दान करने से राजाई मिलती है, लेकिन अभी तुम पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आज का गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, धरती के प्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुने। जब बाबा आते थे, साकार बाबा आते थे, जब गीत बजाते थे तो कभी कभी 2 लाइन होती थी, कभी 3 लाइन होती थी, कभी आधा गीत बजाते थे और एक ही लाइन बजती थी, बाबा इशारा करते थे बंद कर दो। तो बाबा बता रहे हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीरथ हैं। अब बताओ कितने तीरथ हैं, कौन बताएगा? एक तीरथ कौन सा बताओ? है कितने की तीरथ, कौन बता सकता है? कोई भी बताए। एक तीरथ है मुक्ति धाम, और दूसरा साकार दुनिया में बड़े से बड़ा तीरथ कौन है? मधुबन। और बाकी तीरथ कहाँ है? भारत और देश विदेश में जितने सेंटर्स हैं वो भी बच्चों के लिए तीरथ है। वो लोग तो 4 तीरथ धाम बताते हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए तो कितने तीरथ धाम है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, तुम्हारे तीरथ हैं घर में बैठ चुपके से मुक्ति धाम पहुंच जाना। दुनिया की तीरथ तो कॉमन है, तुम्हारे है न्यारे। किसको बोलो कि मुक्ति धाम हमारा तीरथ है, वो समझेगा ही नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे तीरथ जो है वो कितने न्यारे हैं, और मधुबन सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इस तीर्थ स्थान में तो देखो कहाँ कहाँ से बाबा के बच्चे आते हैं, और अभी भी देख रहे हैं शांतिवन से जो आए हाथ खड़ा करे। देखो कितने आए हैं, आएंगे चारों धाम की यात्रा करना है, एक घंटे के लिए दो घंटे के लिए आएंगे, वेलकम है, बहुत अच्छा है। अपने ही स्थान में बाबा के घर में तीर्थ स्थान पर आए हैं तो बाबा भी बहुत प्यार से रिसीव करते हैं और स्वागत भी करते हैं। दुनिया के तीर्थ तो कॉमन है, तुम्हारे हैं न्यारे। मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत भटकता रहता है। वो जाते हैं सोचते यहाँ पर साधु रहता है, यहाँ पर ये रहता है, वहां पर जाना चाहिए, तो उनकी बुद्धि वहां जाती है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्यों का बुद्धि योग तो साधु संतों आदि तरफ बहुत भटकता रहता है। तुम बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करने का डायरेक्शन मिला है। वह है निराकार बाप, ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में भी कई है ना, कोई निराकारी मत है। बाबा की तुम निराकार बाप को मानते हो तो ऐसा नहीं कहेंगे कि निराकारी मत है, लेकिन पढ़ाने वाला निराकार बाप है। ऐसे नहीं कि निराकार को मानने वाले निराकारी मत के ठहरे। दुनिया में तो मत मतांतर बहुत है, ये एक निराकारी मत निराकार बाप ही देते हैं, जिससे मनुष्य ऊंचते ऊंच पद जीवन मुक्ति व मुक्ति को पाते हैं। इन बातों को कुछ भी जानते नहीं कि निराकार बाप आके क्या करते हैं, कैसे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि निराकार को मानने वाले हैं, अनेका अनेक मते हैं। सतयुग में होती है एक मत, और कलयुग में है अनेक मते, अनेक धर्म है, लाखों करोड़ों मते होंगी। अब बाबा कहते करोड़ों मनुष्य हैं तो करोड़ों मते होंगी ना, तो बाबा को कहना पड़ता है लाखों करोड़ों मते होंगी। घर घर में हर एक की अपनी मत। एक घर में चार लोग होंगे, बाप कुछ कहेगा, माँ कुछ कहेगी, बच्चे कुछ कहेंगे। कई बार देखते हैं माँ कहाँ मंदिर जाएगी, बाप कहीं और जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, तो अनेक प्रकार के मते हैं। तो बाबा कहते घर घर में हर एक की अपनी मत। यहाँ तुम बच्चों को एक बाप से ऊंच से ऊंच मत मिलती हैं, ऊंच से ऊंच बनाने के। एक ही बाप से ऊंच मत मिलती हैं, ऊंच से ऊंच बनाने की। तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहते हैं ये क्या बनाया है। अब झाड़ का चित्र देखा तो लोगों को आश्चर्य होता था ये क्या है, लेकिन लोग उसको लाइक बहुत किया कि ऐसा चित्र दुनिया में कोई भी आर्टिस्ट नहीं बना सकता है। तो बाबा कहते तुम्हारे चित्र देखकर बहुत लोग कहती हैं कि ये क्या बनाया है। मुख्य बात है बोलो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। बाबा कहते उनको बताओ ये क्या है, ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जिस ज्ञान से हम आस्तिक बनते हैं। आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता। अब इस बाप से वर्षा कहाँ कैसे मिलेगा, पहली बात बाबा ने क्या कहा पढ़ाई और सर्विस, दूसरी बात बाबा ने कही कि आस्तिक बनने से बाप से वर्षा मिलता है, नास्तिक बनने से वर्षा गवाया है। अभी तुम बच्चों का धंधा ही है कौन सा, नास्तिक से आस्तिक बनाना। धंधा कौन सा है, नास्तिक से आस्तिक बनाना। ये परिचय तुमको मिला है बाप से। त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना? ब्राह्मणों से ही यज्ञ चलता है। ये बहुत भारी बड़ा यज्ञ है। पहले पहले तो ये समझाना होता है कि ऊंच से ऊंच बाप है, सभी आत्माएं भाई भाई ठहरी, सभी एक बाप को याद करते ना। दुनिया में भी सब परमात्मा को याद करते हैं, तो बाबा की तो उनके बच्चे होने के कारण भाई भाई है, सभी एक बाप को याद करते हैं, उनको बाप कहते हैं। वर्षा भी रचयिता बाप से ही मिलता है, रचना से तो मिल ना सके। प्रॉपर्टी जो मिलेगी बाप से मिलेगी ना, रचना से तो नहीं मिल सकती ना, तो बाबा की तो रचना से तो मिल ना सके, इसलिए ईश्वर को सभी याद करते हैं। अब बाप है ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर के ये कार्य करते। कौन सा कार्य करते हैं? बेहद की बादशाही देते हैं, नास्तिक को आस्तिक बनाते, तो बाबा ये कार्य करते हैं। अब बाप ही स्वर्ग का रचयिता और भारत में ही आते हैं, आकर ये कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ी अच्छी चीज है। ये बाबा और ये दादा, त्रिमूर्ति में ऊपर शिव बाबा है, फिर ब्रह्मा बाबा है, विष्णु है, शंकर है, तो बाबा कहते ये बाबा और ये दादा। ब्रह्मा द्वारा बाबा सूर्यवंशी घराने की स्थापना करा रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते। मेडल समझते हो, बाबा के टाइम पर बाबा ने बैज बनवाए थे। वो बैज जो था ऐसे त्रिकोणा बैज था, उसमें त्रिमूर्ति का चित्र था। बाबा शुरू में उसको मेडल कहते थे, जैसे मिलिट्री में होते ना तो मेडल लगाते हैं, मेडल डालते हैं, तो बाबा इसको मेडल कहते थे। फिर बाद में बाबा ने करेक्ट किया, बाबरा ने इसको बैज कहना शुरू किया। तो पहले जो शुरू वाले भाई बहन है उन्होंने देखा होगा, जिसने देखा है त्रिमूर्ति का बैज, बहुत है जो पुराने हैं, उस समय त्रिमूर्ति का बैज होता था और वो त्रिमूर्ति त्रिकोणा टाइप बना होता था। फिर उसके बाद दूसरे बैज बने, फिर उसके बाद बाबा ने करेक्ट किया, अभी अलग प्रकार से बैज है। लेकिन ये बैज जो है बहुत सुंदर है, त्रिमूर्ति इसके ऊपर, लेकिन वो त्रिकोणे वाला बैज नहीं देखा होगा, तो त्रिकोणा बैज था, फिर उसको चेंज किया। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट पूरी है, इसलिए बाबा मेडल्स भी बनवाते हैं। बोलो शॉर्ट में, शॉर्ट दो अक्षर में आपको समझाते। शुरू शुरू में जब मेडल लगाते थे ना, लोग पूछते ये क्या लगाया है, तो बाबा ने कहा ये भी सेवा का तरीका, उनको बोलो आपको शॉर्ट में बताते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, और कराने वाला कौन है? शिव बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बोलो शॉर्ट में, शॉर्ट दो अक्षर आपको समझाते हैं। बाप से सेकंड में वर्षा मिलना चाहिए। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। ये मेडल तो बहुत अच्छी चीज है, बाबा हमेशा कहते थे ये बैज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सेवा हो सकती है। बैज के द्वारा देखो सेवा भी है, सेफ्टी भी है, नशा भी रहता है, और दूसरे लोग देखते हैं तो उनको भी बहुत खुशी होती है। कईयों के इतने सुंदर सुंदर अनुभव हैं, कहते बैज डाला हुआ था और बैज को देख करके कई तरह के लोग आते हैं। एक बार एक भाई बता रहा था, बैज डाला हुआ था तो एक चोर आ गया, बोलो कुछ दो, तो बोला मेरे पास तो ये है तुम ले लो। तो देखा तो ये तो भगवान की मूर्ति है, बोला ये मैं नहीं लूंगा। तो सेफ्टी का साधन भी है, तो इसलिए बाबा कहते बैज जो है ये सबको डालना चाहिए। बिना बैज के फिर नहीं होता है बैज, तो फिर कहीं भी जाते ना पूछते आप कहां से आए हो, किस सेंटर से आए हो, तो पूछते बैज पहनने से पता पड़ता है कि बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा उस समय मेडल्स कहते थे। तो बाबा कहते हैं ये मेडल्स तो बहुत अच्छी चीज है, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं। शुरू में बैज लगाने में भी शर्म आती थी कईयों को, सोचते थे कि लोग पूछेंगे क्यों लगाया, तो उसमें बाबा कहते देह अभिमानी है, अब तो सभी लगाते ही हैं, परंतु बहुत देह अभिमानी बच्चे समझते नहीं हैं। इनमें सारा ज्ञान है एक सेकंड का। बाबा भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं, नई दुनिया बाप ही स्थापन करते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी गाया हुआ है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, किसी में ज्ञान ज्यादा योग नहीं है, किसी में योग है कम है थोड़ा बहुत ज्ञान है, फिर कोई में धारणा नहीं है। कोई का योग है तो फिर ज्ञान नहीं, धारणा नहीं होती। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। सर्विस करने वाले बच्चों को ज्ञान की धारणा अच्छी हो सकती है। बाप आकर के मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करे, और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम के। लौकिक में भी क्या है, बाप बहुत कुछ करता और बच्चा कुछ भी नहीं करता तो बाप क्या कहेगा, बच्चा होते हुए भी नामकार है। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं, देखो बाबा कितनी सेवा करते हैं और बच्चे बनकर के सेवा ना करें तो फिर किस काम के रहे। बाप आकर मनुष्य के देवता बनाने की सेवा करे और बच्चे कोई सेवा ना करे तो वह क्या काम के। तो बाबा बता रहे हैं वह दिल पर कैसे चढ़ सकते, सेवा नहीं करेंगे तो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे। बाप कहते हैं ड्रामा में मेरा पार्ट ही है रावण राज्य से सबको छुड़ाना, राम राज्य और रावण राज्य भारत में ही गाया हुआ है। अब राम कौन है ये भी जानते नहीं, गाते भी हैं पतित पावन भक्तों का भगवान एक, गाते रहते पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते गाते रहते लेकिन जानते नहीं हैं। तो पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। मिस्टर पहले पहले कोई भी आए तो बाबा कहते पहला काम क्या करना है, उसको बाप का परिचय देना है। पहले पहले जब कोई अंदर घुसे तो बाप का परिचय दो। आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए, कोई ऐसे आते सुनना नहीं चाहते और उनको बहुत ज्ञान दे देते हैं तो उससे क्या होता है, डिससर्विस हो जाती है। तो बाबा के हमेशा कहते हैं नब्ज देखकर ज्ञान दो। तो बाबा कहते आदमी आदमी देखकर समझाना चाहिए। बेहद का बाप आते ही है बेहद का सुख का वर्षा देने, उनको अपना शरीर तो है नहीं फिर वर्षा कैसे देते हैं। खुद कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से पढ़ाकर राजयोग सिखलाए ये पद प्राप्त कराता हूँ। बाबा खुद बताते हैं पढ़ाता हूँ इस ब्रह्मा तन से फिर राजयोग सिखलाता हूँ तुमको इतना ऊंच पद देता हूँ। इस मेडल में सेकंड की समझानी है, ये बैच के अंदर कितनी समझानी है, कितना छोटा मेडल है परंतु समझाने वाले बड़े देही अभिमानी चाहिए, वे बहुत कम है। ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं कि ज्ञान को सुनाने, उसमें तो बहुत मुश्किल होता था, डरते भी थे ज्ञान सुनाने में तो सोचते थे लोग हमें क्या कहेंगे, अभी तो इतना मुश्किल नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रख कर देखो सारे दिन में हम कितना टाइम याद में रहते हैं, सारा दिन ऑफिस में काम करते याद में रहना है, कर्म तो करना ही है। यहाँ योग में बिठाकर कहते हैं कि बाप को याद करो, उस समय कर्म तो करते नहीं हो। बाबा राज बता रहे हैं यहाँ बैठ करके भी बाबा को याद तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए भी बाबा को याद करना है। उस समय कर्म तो करते नहीं हो, तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है, नहीं तो बैठने की आदत पड़ जाती। समझते योग का अर्थ है कि बैठो और बाबा को याद करो, बाबा की तो नहीं, चलते फिरते बाप को याद करना है। कर्म करते याद में रहेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। ये राजयोग सहज योग कर्म योग है ना, तो बाबा कहते कर्म करते बाप को याद करेंगे तब कर्म योगी सिद्ध होंगे। पाठ तो जरूर बजाना है, इसमें ही माया विघन डालती है। सच्चाई से चार्ट कोई लिखते नहीं है, कोई कोई लिखते भी है, आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे। कई बच्चे इतना होशियार हैं, चार्ट कैसे लिखेंगे, सुबह 15 मिनट योग किया, 5 मिनट क्लास के बाद योग किया, 5 मिनट मुरली से पहले योग किया, 5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल का किया, वो 5-5 मिनट गिनती करके लिख देते, आधा घंटा या आधा पौना घंटा याद किया। तो बाबा कहते देखो कितने होशियार हैं, करेंगे कुछ भी नहीं, बस ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम साइलेंस में खड़े हो गए, समझते हमने बाबा को याद किया। तो आज भी बाबा यही बता रहे हैं, कोई कोई लिखते हैं आधा घंटा पौना घंटा याद में रहे, सो भी सवेरे ही याद में बैठते होंगे। जो बाबा को चार्ट भेजा तो बाबा बता रहे हैं, भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं, ऐसे नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं और भी बहुत संकल्प आते रहेंगे। सुबह सुबह यही होता है, भक्ति मार्ग में भी होता है, भगवान को याद करते हैं, आज ये काम करना आज ये करना। बच्चों को भी होता है, योग में बैठते हैं तो कई प्रकार के विचार भी आ जाते हैं, सेवा के प्लान भी आ जाते हैं, कई बातें आ जाती ना, तो इसलिए बाबा पूरा क्लियर करके बताते हैं। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर राम की माला बैठ जपते हैं, ऐसे नहीं कि उस समय एक ही धुन में रहते हैं, नहीं और भी बहुत संकल्प आते होंगे। तीव्र भक्तों की बुद्धि कुछ ठहरती है, ये तो है अजप्पा जाप। उनकी तो बुद्धि, कई अच्छे भगत हैं, थोड़े टाइम के लिए बुद्धि स्थिर होती है, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों के लिए है ये है अजप्पा जाप। नई बात है ना, गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु श्री कृष्ण का नाम देने से श्री कृष्ण को याद कर लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं है, मेडल साथ में जरूर हो। अच्छा, जिसने बैज नहीं लगाया वो हाथ खड़ा करे। सब ने लगाया, कभी कभी होता है ना ठंडी में शॉल पहन लिया, भूल जाती है, अंदर स्वेटर पे लगाया वो रह जाता है, लेकिन ध्यान रखना है बैज सदा साथ लगा रहे तो नशा भी चढ़ेगा। मेडल साथ में जरूर हो, बोलो बाप ब्रह्मा तन से बैज समझाते हैं, हम उस बाप से प्रीत रखते हैं। मनुष्यों को तो ना आत्मा का ना परमात्मा का ज्ञान है, सिवाय बाप के ये ज्ञान कोई दे ना सके। ये त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, त्रिमूर्ति का है ना बैज ऊपर शिव बाबा, तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव सबसे मुख्य है, बाप और वर्षा। इस चक्र को समझना तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी प्रजा तो लाखों की बनती रहती है, राजाएं थोड़े होते हैं, उनकी प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती। राजा तो एक रहेगा, रॉयल फैमिली थोड़े होंगे, प्रजा तो बहुत रहती ना। तो बाबा कहते हैं उनकी प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होती है, प्रजा ढेर बनती है, बाकी राजा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, कहते हैं नौकरी छोड़ दे, खाने के लिए तो है। अब बाबा भी देखते थे बच्चों की स्टेज को देखकर। कई बच्चे ऐसे जोश में आके कहेंगे नौकरी छोड़ दें, बाकी फिर आने के बाद सेवा नहीं करेंगे, या ऐसे भी हो जाता है जोश में आ गए फिर सेवा नहीं करते। बाबा हर एक की नब्स को देखकर कहते थे, बाबा कहते नौकरी भी करो सेवा भी करो, तो फिर जिसको देखते थे बंधन नहीं है तो बाबा उनको छुट्टी देते थे पहले ट्रायल के लिए। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, कोई भी आता है पहले उसको ट्रायल के लिए रखते हैं, ट्रायल के बाद फिर अगर कुछ है ठीक तो उसको समर्पण कराते ना। तो बाबा कहते हैं, कहते नौकरी छोड़ दें खाने के लिए तो है ही, बाबा का बन गए तो शिव बाबा की परविश लेंगे। परंतु बाबा कहते हैं, अब दूसरी बात, मैंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया है ना, माताएं भी तो जवान हैं, तो घर में रहते दोनों सर्विस करने। कई माताएं सोचेंगी हम चले जाएं सेंटर पर रहेंगे, बाबा कहते थे नहीं, घर की सेवा भी करो परिवार भी संभालो और दूसरी सेवा भी करो। बाबा हर एक की सर्कमस्टांसिस को देख राय देते, सबको एक जैसी नहीं, कोई माता जवान है फ्री है कोई बंधन नहीं है तो बाबा कहेंगे ठीक है, कोई माता जवान है घर के बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बाबा उसको कहेंगे घर में भी रहो सेवा करो। तो बाबा कहते हैं, बाबा हर एक के सर्कमस्टांसिस को देख राय देते हैं, शादी आदि के लिए अगर अलाउ न करे तो हंगामा हो जाए। अब घर में रहते हैं प्रोग्राम्स होते हैं उनको जाना पड़ेगा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं उनको ध्यान रखना है कि अंदर से बाबा को याद करते रहें, इसलिए हर एक का हिसाब किताब देख राय देंगे। कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, कुमार आते थे बाबा के पास, बाबा हमको शादी के लिए बहुत बंधन डालते, बाबा कहते तुम कोई बकरी थोड़ी हो, तुमको थोड़ी, तुम तो नौकरी भी कर सकते हो कमा के खा भी सकते हो, कुमारी का भी देखते थे कोई बंधन है तो बाबा पहले उनको कहते थे तुम मजबूत बनो शेरनी बनो। हमें याद आता है चंद्रमणि दादी जो है ना, वो कुमारियों की जब क्लास कराती थी ऐसी धराण वाली क्लास होती थी, उनकी क्लास ऐसी होती एक ही क्लास से सब बहने कुमारियां परिवर्तित शक्तिशाली बन जाती, वो कहती तुम शक्ति हो, वो खुद भी ऐसी और एक ही आवाज होती थी उस आवाज से सब शक्तिशाली बन जाते। और आजकल कुमारियों को कोई बंधन थोड़ी है, मन का बंधन है, उस समय तो परिवार का बंधन होता था आजकल नहीं है। तो इसलिए बाबा क्या बता रहे हैं, कुमारों के लिए भी बता रहे हैं, कुमार है तो कहेंगे तुम सर्विस कर सकते हो, सर्विस कर बेहद के बाप से वर्षा लो, उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा और वो भी क्या है, बाबा कहते धूल छाई, उस बाप से तुमको क्या मिलेगा, धूल छाई थोड़ा बहुत मिलता है वो भी क्या है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, दिन प्रतिदिन टाइम कम होता जाता है, कई समझते हैं हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, दुनिया में जाओ बहुत पैसे वाले हैं समझते हमारी प्रॉपर्टी के बच्चे मालिक बनेंगे, कभी प्रॉपर्टी खत्म हो गई कभी बच्चे नालायक निकल जाते हैं सारी प्रॉपर्टी को ही खत्म कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कई समझते हमारी मिल्कियत के बच्चे वारिस बनेंगे, परंतु बाप कहते हैं कुछ भी मिलने का नहीं है, सारी मिल्कियत खाक में मिल जाएगी, वह समझते हैं पिछाड़ी वाले खाएंगे, पिछाड़ी वाले तो क्या गवर्नमेंट ही छानबीन करके ले जाती है। धनवान का धन खत्म होने से कोई देरी नहीं लगती है, धनवान का धन खत्म होने में कोई देरी नहीं लगती है, मौत तो सामने खड़ा है कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे। कभी देखते हैं कहीं पर नेचुरल क्लैमिटीज होती है, जब आपने देखा था बहुत बड़ा भूकंप आया था, मकान के मकान दब गए लोग के लोग दब गए सारी प्रॉपर्टी चली गई ना। तो बाबा कहते हैं मौत तो सामने खड़ा है कोई भी वर्षा ले नहीं सकेंगे, बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझा सकते हैं, जास्ती सर्विस करने वाले ही ऊंच पद पाएंगे, उनका रिकॉर्ड भी रखना चाहिए, इनसे सीखना है। ब्रह्मा बाबा हर एक का रिकॉर्ड रखते थे, बच्चे आते थे बहुत प्यार से उनको रिस्पेक्ट देते थे, सेवा करने वाले को बाबा बहुत रिस्पेक्ट देते थे, सबको देते थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो सेवा करते हैं, धारणा में अच्छे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है सबका रिगार्ड रखना। इसलिए शिव बाबा क्या बता रहे हैं, इनसे सीखना है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा ने क्या नहीं किया है। और ये जनवरी मास भी बाबा का महीना चल रहा है, तो बाबा कहते हैं इनसे सीखना है 21 जन्म के लिए रिगार्ड रखना पड़े, ऑटोमेटिकली जरूर वह ऊंच पद पाएंगे। तो रिगार्ड तो जहां तहां रहना ही है, जो ऊंच पद पाएंगे उसको ऑटोमेटिकली रिगार्ड मिलेगा और 21 जन्मों तक मिलेगा। खुद भी समझ सकते हैं, जो मिला सो अच्छा, इसमें ही खुश होते हैं। बेहद की राजाई के लिए पढ़ाई और सर्विस पर पूरा अटेंशन चाहिए, ये है बेहद की पढ़ाई। ये राजधानी स्थापन हो रही है ना, इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर क्या बनते हो, प्रिंस बनते। पहले राजा बनने से पहले, बेहद का महाराजा बनने से पहले क्या बनेंगे, प्रिंस बनेंगे। तो बाबा कहते इस पढ़ाई से यहाँ तुम पढ़कर प्रिंस बनते हो। कोई भी मनुष्य धन दान करते हैं तो वे राजा के पास वह साहूकार के पास जन्म लेते हैं, परंतु वह है अल्प काल का सुख। तो इस पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए, सर्विस का होना अर्थात फिकर रहना चाहिए। हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। शुरू में बाबा ने डायरेक्शन दिया, कई कई बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं लेकिन अपने गांव में जाते हैं, सेंटर खोल के आते हैं, वहां पर सेंटर खुलवा देते हैं, गीता पाठशाला खुलवा देते हैं, अपने गांव में भी सेवा करते हैं। अभी तो देखो गांव में इतने गीता पाठशाला सेंटर से उसकी लिस्ट निकालते जाओ तो लिस्ट ही नहीं पूरी हो पाती, पता ही नहीं पड़ता है कितने क्लासेस हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारे डायरेक्शन बाबा ने पहले दे दिए थे, हम अपने गांव में जाकर सर्विस करें, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अभी कोई में है नहीं, उस समय की बात कि कई ऐसे हैं शर्म करते थे ना, सेवा करने में भी डरते थे। बाबा जानते हैं सर्विस का शौक अजय कोई में है नहीं, लक्षण भी तो बहुत अच्छे चाहिए ना, सेवा करना है तो लक्षण करेक्टर्स भी बाबा कहते बहुत अच्छे चाहिए। ऐसे नहीं कि डिस सर्विस कर और ही यज्ञ का नाम बदनाम करे, जाए सेवा करने कोई ना कोई ऐसा काम कर दे। कभी कभी सेवा करने जाते ना तो साथ में सेवा समझाते समझाते गुस्सा कर देते, अरे वो कहता तुम समझा रहे गुस्सा क्यों कर रहा है, तो सर्विस के बजाय डिस सर्विस कर देते ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि डिस सर्विस कर और ही यज्ञ का नाम बदनाम करें और अपना ही नुकसान कर दें। बाबा तो हर बात के लिए अच्छी रीति समझाते हैं, मेडल्स आदि के लिए कितना ओना रहता है, बाबा को होता था अच्छे अच्छे मेडल बनाओ, फिर समझा जाता है ड्रामा अनुसार देरी पड़ती है, क्योंकि मेडल्स बनाने का डायरेक्शन भी बाबा ने दिया था। तो बाबा ने कहा बाबा को कितना ओना रहता है कि जल्दी बने, लेकिन कभी कभी जल्दी नहीं बनते थे, फिर बाबा ड्रामा पे छोड़ देते थे। ड्रामा अनुसार अभी देरी पड़ती है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा है तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती। तो बाबा बता रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट चित्र भी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चों पर आज बृहस्पति की दशा तो कल फिर राहु की दशा बैठ जाती है। ड्रामा में साक्षी हो पार्ट को देखना पड़ता। बाबा और हम बच्चों में अंतर है, कोई ऊपर नीचे करता है तो हम उसके लिए कितना कहेंगे ये है वो है, लेकिन बाबा क्या कहते थे ये ड्रामा में उसका पार्ट है, तो बाबा साक्षी होके देखते थे। ऊंच पद पाने वाले बहुत कम होते हैं। हो सकता है ग्रहचारी भी उतर जाए। ग्रहचारी उतरती हैं तो फिर जंप कर लेते हैं। पुरुषार्थ कर अपना जीवन बनाना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्य नाश हो जाएगी। समझेंगे कल्प पहले मौफिक ग्रहचारी आई है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। ऊंच से ऊंच है भगवान की श्रीमत। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को सिवाय तुम्हारी कोई समझ नहीं सके। वो तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख करके पूजा करने लग जाते हैं। बाबा क्यों बताते, तुम समझते कि हम ऐसा बनने वाले, इसलिए बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को सिवाय तुम्हारे कोई समझ ना सके। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बना है, चित्र देखते ना बहुत अच्छा है, श्री कृष्ण का चित्र देखते कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रहस्य वो तो नहीं जानते ना। कहेंगे चित्र तो बहुत अच्छा बना है, बस तुमको ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूल वतन, सारी सृष्टि का चक्र बुद्धि में आ जाएगा। अंतर वो लोगों को चित्र अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, और बच्चों को ये चित्र देखने से मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान आ जाएगा। तुम नॉलेजफुल बनते हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है। साकार में बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते थे, जब एकांत में होते थे कभी कभी बाबा जाके नारायण के लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास जाकर बैठते थे, और बाबा बहुत खुशी में कि मैं ये जाके बनने वाला हूँ। कभी कभी बाबा खुद चेकिंग भी करते थे, अगर मेरे को ये बनना है तो मुझे पूरा अपने आप को संपन्न बनाना है। तो बाबा को क्या होता था, बाबा को तो ये चित्र देख बहुत खुशी होती है। स्टूडेंट्स को तो खुशी होनी चाहिए, हम पढ़कर ये बनते हैं, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा। कई बच्चे भाग्य पर डिपेंडेंट होगा, पद तो मिल ही जाना है, कोई बात नहीं है, सत्यों में तो सुखी रहेंगे, पद तो मिल ही जाएगा, लेकिन बाबा कहते नहीं, पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। ऐसे नहीं कि जो भाग्य में होगा, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। पुरुषार्थ कराने वाला बाप मिला है, उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या होगा, बुरी गति होगी। बुरी गति में पद बहुत कम हो जाएगा। उनकी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बुरी गति होगी। पहले पहले तो कोई को भी इस मेडल पर ही समझाओ, फिर जो लायक होंगे वो झट कहेंगे हमको ये मेडल्स मिल सकते हैं। बाबा ने युक्ति बताई, तो जो यहाँ के होंगे ब्राह्मण परिवार के, वो मांगेंगे और वो समझदार होंगे तो बाबा कहते हाँ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं हमको ये मिल सकते हैं, बोलो हाँ क्यों नहीं। इस धर्म का जो होगा उसको तीर लग जाएगा, उसका कल्याण हो सकता है। बाप तो सेकंड में हथेली पर बहिष्ट देते हैं, इसमें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम शिव के भक्तों को ये ज्ञान दो। अभी शिवरात्रि आ रही ना, तो बाबा क्या कहते, शिव के भक्तों को ज्ञान दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। बस सारा दिन यही सर्विस करो। खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत हैं। बनारस की सेवा के लिए बाबा को बहुत ओना रहता था, बाबा बहुत ध्यान भी खिंचवाते थे, और बाबा ने खास गुप्ता जी को वहाँ बनारस की सेवा के लिए भेजा था और साथ में सुरेंद्र बहन को भेजा था। तो उन्होंने कहा बाबा वहाँ तो महामल्लेश्वर रहते हैं, इतने महात्माएं रहते हैं, सेवा बहुत कठिन है, काफी कठिनाइयां तो आई उनके सामने। बाबा ने कहा पहले मंदिर में जाओ, शिव के भक्तों को ज्ञान दो, धीरे धीरे महामल्लेश्वर से मिलते जाओ। तो अभी तो आप सुनते ही रहते हैं, सुरेंद्र बहन ने यहाँ के कई बार समाचार सुना है कैसे महामल्लेश्वर भी उनके स्नेही सहयोगी हैं। तो बाबा बता रहे हैं खास बनारस में शिव के मंदिर तो बहुत हैं। वहां अच्छी सर्विस हो सकती है, कोई ना कोई निकलेंगे, बहुत इजी सर्विस है। बच्चे कहते कठिन है, बाबा कहते बहुत इजी सर्विस है, कोई करके तो देखो, खाना तो मिलेगा ना, जाओ सेवा करो, प्रवेश तो हो जाएगी, सर्विस करके देखो तो सही, सेंटर तो वहां है ही, सवेरे जाओ मंदिर में, रात को लौट के आओ, सुबह जाके बैठ जाओ, भगत बन के बैठ जाओ, जो भी आए उसको सुनाते रहो। तो बाबा ने ऐसी कितनी युक्तियां बताई और बच्चों ने किया भी, सवेरे जाओ मंदिर में और रात को लौट के आओ, सेंटर बना दो, सबसे जास्ती तुम शिव के मंदिर में सर्विस कर सकते हो। ऊंची ऊंच है ही शिव का मंदिर, बॉम्बे में बबुल नाथ का मंदिर है, दादी जानकी भी बताती थी कैसे वो बबुल नाथ के मंदिर में जाते थे, पैदल चले जाते थे, वहां जाके बैठ जाती, भक्तों को ज्ञान सुनाती रहती थी। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे में बबुल नाथ का मंदिर है, सारा दिन वहां जाकर सर्विस कर बहुतों का कल्याण कर सकते हो, बस ये मेडल ही बस है और कुछ ना हो, खाली आज जाओ बैज लेके बैठ जाओ, ये मेडल ही बस है, ट्रायल करके तो देखो ना। बाबा कहते हैं ये मेडल्स लाख तो क्या, 10 लाख बनाओ। अब तो कितने बनते हैं, उस समय तो 10, 100, 200 भी बड़ी मुश्किल से बनते थे, तो बाबा ने क्या कहा, लाख तो क्या 10 लाख बनाओ, बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी, बुजुर्गों को कोई काम नहीं, जाके बैठे रहो, घर की चिंता नहीं, बैठ जाओ ज्ञान सुनाते रहो, बुजुर्ग लोग तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, ढेर प्रजा बन जाएगी। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो बस, मन मना भाव अक्षर भूल गए हो ना, भगवानों वाचे शिव बाबा श्री कृष्ण को भी ये पद प्राप्त कराते हैं, फिर धक्का खाने की क्या दरकार है, उनको जाके समझाओ। बाप तो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तुम सबसे अच्छी सर्विस कहाँ कर सकते हैं, शिव के मंदिर में कर सकेंगे। सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो। अब बाबा ने हर बात के लिए क्या बताया, कोई भी सेवा करते हो अपनी अवस्था कैसी हो, देही अभिमानी, सर्विस की सफलता के लिए देही अभिमानी अवस्था में स्थित होकर सर्विस करो, दिल साफ तो मुराद हासिल। बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते, बाबा को बनारस के लिए बहुत होता था, बाबा को पता था ना वहाँ भक्ति बहुत है, शिव के मंदिर है और वहाँ जाकर के बहुत पूजा करते हैं, तो बाबा को रहता था कि बच्चों को वहाँ पर सेंटर खोलना चाहिए, तो ये बाबा के शुभ संकल्प से ही वहाँ सेंटर खोला और वहाँ खूब सेवाएं हुई। दिन साफ तो मुराद हासिल, बनारस के लिए बाबा तो खास राय देते हैं, वहाँ वानप्रस्थियों के आश्रम भी है, बहुत है वानप्रस्थियों के आश्रम, लोग जाते हैं वानप्रस्थी होते हैं वहाँ जाके रहते हैं। बोलो हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, और कोई उपाय ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो। बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया था, बैठ जाओ, वो लोग समझे ये भगत बैठा हुआ, बहुत अच्छा भगत है, सुबह से शाम तक बैठा हुआ, लेकिन भगत तो क्या, उनको भक्ति का फल देने की सेवा कर रहा है, तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक शिव के मंदिर में बैठ सर्विस करो, ट्राई करके तो देखो ना, ऐसे नहीं कहो कि सेवा नहीं होती क्या होगा। तो बाबा कहते हैं ट्राई करके देखो, शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेंगे, जाओ मंदिर में सेवा करो, वहाँ कोई कुछ नहीं कहेंगे, बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। तो शिव बाबा खुद कहते हैं हमारे मंदिर तो बहुत हैं, तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेंगे और ही खुश हो जाएंगे, वह तो कहेंगे ये तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। बोलो ये ब्रह्मा है, ये ब्राह्मण है, ये कोई देवता नहीं है, ये ब्रह्मा है ब्राह्मण है देवता नहीं है, ये भी शिव बाबा को याद कर ये पद पाते हैं। इन द्वारा शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। कितना इजी है, बाबा कहते ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाओ, थोड़ा ही सुनाओ। कितना इजी है, बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बुजुर्गों को देखते ना खुश होते हैं, उनसे बैठते हैं और मीठी मीठी बातें करते हैं, उनसे बातें करते करते बुजुर्ग उनको ज्ञान भी दे सकते हैं। तो बाबा कहते कोई जवान जाएगा उसको तो कुछ कुछ बोल देंगे, बुजुर्गों को क्या बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं बुजुर्ग की कोई इंसल्ट नहीं करेगा। बनारस में अभी तक इतनी सर्विस हुई नहीं है। जब बाबा ने कहा ना तो गुप्ता जी ने बहुत प्यार से जगह जगह जाकर सेवा की और बाबा को रिजल्ट भी बताते थे और बाबा फिर सुनते थे, फिर उनको और उत्साहित भी करते थे। बहुत सेवा हुई है। तो बाबा कहते हैं अब तो बहुत बड़ा सब जोन बन गया, बहुत सेंटर्स है बनारस से कनेक्टेड। तो बाबा कहते हैं बनारस में अभी तक इतनी कोई सर्विस नहीं हुई है। मेडल व चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं। कई आते थे मांगते थे, ज्ञान सुनना अच्छा लगा तो बाबा गरीब के लिए हमेशा कहते थे लिटरेचर भी है गरीब को फ्री दो। और जब कोई साहूकार आता है वो कहेगा क्या करना है, तो बाबा कहते थे उनको बोलो गरीबों के लिए फ्री है और जो अमीरों के लिए जो भी देगा उससे और लिटरेचर छपवा के दूसरों को देंगे। अमीर तो कर सकता है, जो समझदार होता तो वो तो कर देता था, कोई समझदार नहीं होगा वो भी फ्री लेके चला जाता था। बाबा कहते ये भी उनका भाग्य है। कोई गरीब है तो बोलो तुमको फ्री देते हैं, साहूकार है तो बोलो तुमको देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तुम जो थोड़ा बहुत दोगे, और जो बाबा हमेशा कहते थे जो अज्ञानी होते थे ज्ञान नहीं वो कुछ भी देते थे तो बाबा उसका यज्ञ में नहीं डालते थे, उसके द्वारा लिटरेचर या बैज बनवा करके फ्री बंटवाते थे। तो ये भी एक बहुत गहरा राज है। तो बाबा कहते बोलो साहूकार है तो बोलो तुम देंगे तो बहुतों के कल्याण के लिए और भी छपा लेंगे, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, ये तुम्हारा धंधा सबसे तीखा हो जाएगा। कोई ट्रायल करके तो देखो ना, बाबा कहते करके तो देखो ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। ज्ञान को जीवन में धारण कर फिर सर्विस करनी है। जो जास्ती सर्विस करते हैं अच्छे लक्षण हैं उनका रिकॉर्ड भी जरूर रखना है। दूसरा कर्म करते याद में रहने की आदत डालनी है। सर्विस की सफलता के लिए अपनी अवस्था देही अभिमानी बनानी है। साफ दिल रखनी, दिल साफ रखनी है। वरदान सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप भव। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपने संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होती है अर्थात समाप्त हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। बाबा के पास आते थे बच्चे, बाबा के सामने बैठते थे, बाबा पूछते बच्चे कुछ कहना है, कहेंगे नहीं बाबा। बाबा फिर कहे बच्चे कुछ कहना है तो बोलो, नहीं बाबा कुछ नहीं कहना है। अरे उसको भूल ही जाता था मुझे कहना क्या है, ले गया समस्या, बात करनी है बाबा से, और बाबा को देखा सब समस्याएं खत्म हो जाती थी। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी, वह बातें ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं का विदाई समारोह हो जाए। विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। स्लोगन, जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वह माया के आकर्षण से बच जाते। जो सदा ज्ञान का सिमरन करते हैं वह माया के आकर्षण से बच जाते हैं। अभी साकाश देने की सेवा के लिए अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो, साक्षी बन, सब पाठ देखते साकाश अर्थात सहयोग दो। क्यों? क्योंकि आप सर्व के कल्याण के निमित्त हो। ये साकाश देना ही निभाना है। साकाश से भी कल्याण कर सकते हैं, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश दो। वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अभी हम सुनेंगे आज का आवेग। अच्छा, तो आज का हमें क्या अभ्यास करना है वो सुनेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज का स्वमान है मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। स्वमान, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। योग अभ्यास, मैं आत्मा लाइट, लाइट के चमकीले आकारी फरिश्ते ड्रेस को धारण कर विश्व कल्याण की ऊंची स्टेज पर स्थित होकर अपनी मनसा शुभ वृत्ति द्वारा साकाश दे रहा हूँ। धारणा, सर्व के प्रति मनसा में शुभ भावना की वृत्ति रखनी है। चिंतन, सर्व के कल्याण की विधि क्या है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनों का सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। और एक बात बतानी है, जो भी भाई बहने शांतिवन से आए हैं, क्लास के बाद जब नाश्ते के लिए जाते हैं तो नाश्ता ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है, नीचे कोई भी नहीं बैठेंगे। नीचे स्थान भी बहुत कम है, वहां पर केवल मधुबन निवासी भाई बहने बैठते। सबको ऊपर के डाइनिंग हॉल में जाना है, चाहे टीचर हैं चाहे भाई बहने, क्योंकि वहां पर लिफ्ट भी, अगर नहीं कोई चढ़ सकता है तो लिफ्ट से ही ऊपर जाना है। फिर से बता रहे हैं कि पार्टी में आए हुए भाई बहने और सेवाधारी भाई बहने भी नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में करें, क्योंकि नीचे कुछ काम भी चल रहा है इसलिए जगह कम है। इस बात में सबको सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे,